आदरणीय डॉक्टर हुकम चंद जी भारल के समय सार गाथा 31 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराय स्वर्गुचा चकाशे चित्त भावाय भावाय सर्व भावांतर।
असली भक्ति का नित्य भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह बात स्पष्ट की जा रही है। इसमें कहा गया कि जो इंद्रिय जगत का काम स्वभाव मुड़ी आदम हम खु जिदेन्द्रियंते सदा साधु, जो निश्चय नये में स्थित साधुजन है वो ऐसा कहते हैं कि जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानते हैं वे निश्चय से जितेन्द्रिय जिन है। गाथा का सीधा सच्चा सरल सुबोध अर्थ तो यही है। अब आचार्य देव ने इसमें से अमृतचंद देव ने अनेक महत्वपूर्ण अर्थ निकाले। एक तो इंद्रिय को जीतने का अर्थ उन्होंने ये निकाला, इंद्रियां तीन प्रकार की होती है, दो प्रकार की तो सबने सुनी होगी और पांच की सुनी होगी, एक द्रव्यन्द्रिय, एक भावेन्द्रिय और एक इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ जो इंद्रियों के माध्यम से जानने में आते हैं, ऐसे लोक के सभी पदार्थ का नाम भी इंद्रिय है। और तीनों के जीतने का अर्थ यह है कि इन तीनों से भिन्न अपना भगवान आत्मा है, उसे जान कर इन इंद्रियों में से अपनापन तोड़ कर उसमें अपनापन स्थापित करना, इसका नाम जीतना है। इसी तरह इस गाथा में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों का अर्थ जो आज तक हम समझते हैं वो नहीं है। वो अर्थ लगाकर यदि हम उसका भाव समझना चाहेंगे तो हम वो उसके गहराई तक नहीं पहुंच सकेंगे। इंद्रिय शब्द का समाज का नाम समझते हैं, लेकिन इतना ही नहीं है, उसके अर्थ का विस्तार यहाँ किया है। इसी प्रकार जीतने का अर्थ हम किसी को दबाना मारना दबा कर रखना ये समझते हैं, इंद्रियों का दमन करना किसी का ये समझते हैं, वो भी अर्थ यहाँ नहीं है। किसी का दमन करना इसका नाम जैन धर्म नहीं है, भले ही वो हमारी इंद्रिया हो शत्रु हो, बस मेरे से भिन्न है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनसे संबंध विच्छेद करना ही उन्हें जीतना है। और ये विधि भी बताई कि उन इंद्रियों को जीतने की क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया भी ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई तोड़ फोड़ हो, वो तो ये कहते हैं कि द्रव्यन्द्रियां हैं जड़, क्योंकि शरीर का नाम ही तो द्रव्यन्द्रियां है। इस शरीर के अलावा और द्रव्यन्द्रियां क्या है, आंख कान नाक और क्या है, ये है जड़। और इनसे भिन्न अपना आत्मा है चैतन्य, तो इन दोनों में विरुद्ध स्वभाव है, एक दूसरे के विरोधी है, एक कैसे हो सकते है, चैतन्य जड़ कैसे हो सकता है और जड़ चैतन्य कैसे हो सकता है। एक जड़ इंद्रियां चैतन्य को माने ज्ञान को जानने में कैसे मदद कर सकती है, ये तो ज्ञेय है, ये तो जानने में आने वाली चीज है, जिसे हमने जानने वाले की पार्टी में शामिल कर दिया है, ये हमें जानना, इसका नाम ही द्रव्य इंद्रियों को जीतना है, उनमें से उपयोग हटाकर अपने आत्मा पर ले जाना। और जो भाव इंद्रिय माने ज्ञान का थ्योत्सम है, जानने में प्रवृत्त होता है वो छयोसम में भी एक खराबी है कि वो ज्ञान को खंड खंड करता है, क्योंकि ये जो इंद्रियां है ना, ये एक एक विषय के जानने में ही निमित्त है, तो ज्ञान को ये पराधीनता है। जरा ध्यान से सुनना, अपनी यहाँ पर आंख है ना, आंख से हम आपको देख रहे हैं, तो क्या हमारे आत्मा के प्रदेशों में जो आंख के पास प्रदेश है उन्हीं में आपको देखने की ताकत है? है तो सब प्रदेशों में ताकत, ये हाथ में जो आत्मा के प्रदेश है इनमें भी ये ताकत है कि आपको देख सकते, ऐसा ज्ञान का संयोजन है। लेकिन यहाँ आंख नहीं है इसलिए हम यहाँ से नहीं देख सकते, तो ज्ञान की पराधीनता होगी ना। यदि हम ऐसा ही माने, ऐसा प्रश्न किया है धवन वगैरह में, यदि हम ऐसा ही माने कि यहाँ जो आत्मा के प्रदेश है उनमें ही ज्ञानावरणी चक्षु इंद्रिय ज्ञानावरणी कर्म का चक्षु इंद्रिय दसमावरणी कर्म का तो ज्ञानावरणी कर्म का संबंधी आवरण का क्षयोत्सव है तो ये समस्या हल हो जाएगी। तो उत्तर दिया है वहाँ, ये उत्तर आपको पढ़ना हो तो जो पहले यहाँ सत्वासपा भारतीय दिगम्बर मथुरा संघ थे और पन्नालाल जी साहब ने उसकी टीका लिखी थी, उसके अंत में 59 प्रश्नोत्तर लिखे थे भूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने, और अभी भी यहाँ होंगे, उसमें लिखा है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने जवाब ये धबला के आधार पर लिखा है कि आत्मा के प्रदेश 24 घंटा और 12 महीना ऐसे राउंड में घूमते रहते हैं, एकदम बीच के 8 प्रदेशों को छोड़कर बाकी के सारे प्रदेश ऐसे राउंड में घूमते रहते हैं, बीच के 8 प्रदेश भी घूमते हैं लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ते ना, बीच के होने से वहीं के वहीं घूमते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। आंख के अंदर जो आत्मा के प्रदेश है वो एक सेकंड बाद हाथ में आ जाते हैं, पैर में चले जाते हैं, और पैर और आत्मा में जो प्रदेश है वो आंख के पास आ जाते हैं। यदि उस पर्टिकुलर एरिया में ही ज्ञान का संयोजन माने तो फिर व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि प्रदेश बदलते ही दिखाई नहीं देगा। इससे सिद्ध होता है आत्मा के सब प्रदेशों में संयोजन होता है, एक प्रदेश में हो और एक में नहीं। तो बोलिए ज्ञान की क्या दुर्दशा कर दी इन इंद्रियों ने? आप कहते हैं देखने में सहायक है, देखने की ताकत तो है सारे शरीर में, जो आत्मा के प्रदेश है ना उनमें, और दिखता अकेला यहीं से है, तो ये आत्मा की मजबूरी है। इंद्रियों ने शरीर में आत्मा को सहयोग किया कि उल्टा प्रतिबंध लगाया कि यहाँ से हम क्यों नहीं देख सकते, सर्वांग से हम क्यों नहीं देख सकते। देवजी भगवान तो सर्वांग से ही देखते हैं ना, और ये एक एक विषय को ही जानती है, इसलिए एक ज्ञान को खंड खंड कर देती है। भगवान आत्मा का स्वभाव अखंड है, खंड खंड करने वाली भाव इंद्रियों से भिन्न भगवान आत्मा है अखंड ज्ञानानंद स्वभावी, ये जानना ही भाव इंद्रियों को जीतना है। और इंद्रियों के विषयभूत जो पदार्थ है वो पदार्थ आत्मा के संग है, संग माने समझते हैं ना, कर्मसाधना परिग्रह साथ, देखो संग और साथ में थोड़ा अंतर होता है, शाम को समय नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया, इससे से पता लगेगा अंतर होता है। आपका बेटा पहली दफे बंबई जा रहा था, गाड़ी में रिजर्वेशन भी नहीं मिला, तो आप जाकर के बिना रिजर्वेशन के डब्बे में धक्का मार कर बैठाल कर आए और घर पर उदास बैठे थे। पत्नी ने कहा उदास क्यों बैठे हो? मुझे पता नहीं कि आज अपना बेटा पहली बार मुंबई गया है, वह भी अकेला, कोई संगी साथी नहीं, कोई साथ नहीं। जब और डब्बा में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने को जगह नहीं थी, तो पत्नी बोली पागल हो गए हो, यदि डब्बा में भीड़ थी तो अकेला कैसे गया, कितने साथी तो थे। और यदि अकेला गया तो भीड़ का क्या सवाल है, कि भीड़ भी थी और अकेला भी गया, तो ब्रह्म दिन ये दोनों बातें एक साथ हो सकती है कि नहीं। साथ तो बहुत थे लेकिन संगी कोई नहीं था, संजो साथ में क्या फर्क हो गया, साथ तो समझ गए ना, लेकिन संग माने हम उसमें हमारा अपनापन हो, उनमें हम अपना जाने, अपना कोई हो तो साथ संग कहलाता है, संग संग जाएंगे। बोलोगे नहीं, साथ तो बहुत भीड़ बाजार में चलती है लेकिन संग का मतलब समझे ना, यानी जब हमारा उससे कोई जुड़ान हो तो वो साथ संग बन जाता है, और जुड़ान नहीं हो तो वो संग नहीं बनता है। तो भगवान आत्मा का स्वभाव निसंग है, असंग है, उसको किसी का साथ बनाने का उसका स्वभाव ही नहीं है। देखो इसको मैं पढ़ता हूँ, बहुत मार्मिक बात है इसमें। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, तो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना लंबी है, जो बात समझ में नहीं आया है, आने का क्यों नहीं है, क्या कहा। देखो एक मर्म की बात है, आत्मा का पर पदार्थों के साथ क्या संबंध है, तो संबंध कई प्रकार के होते हैं। एक तो स्वस्वामी संबंध कहते हैं, स्वस्वामी संबंध का मतलब ये है, ये मेरा स्वा है और मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरी संपत्ति है और मैं इसका स्वामी हूँ, इसको बोलते हैं स्वा स्वामी संबंध। तो इन इंद्रियों से भगवान आत्मा का स्वस्वामी संबंध तो है नहीं, हमने मान रखा है इंद्रिया मेरी है, मैं इनका मालिक हूँ, जो चाहूँ तो कराऊ, हाँ जब चाहूँ तो बंद कर लू, जब चाहूँ तो खोलू, जब चाहूँ देखूँ, जब चाहूँ नहीं देखूँ। हम मानते हैं कि ये है हमारी संपत्ति और हम है इनके स्वामी, तो यह कह रहे हैं कि इंद्रियों से तेरा स्वस्वामी संबंध नहीं है, धोखे में मत रहना, तेरी आज्ञा में रहती है तभी तो हम स्वामी कहलाए ना, कि जब हमारी ये आज्ञा में रहे, और हमारी आज्ञा में नहीं रहे तो हम कैसे मालिक। तो जरा विचार करके देखना, एक रोम पर भी तेरा अधिकार चलता है क्या इस पर, यदि ये तेरी है तो तेरा अधिकार चलना चाहिए, एक रोम पर हमारा अधिकार नहीं है और हम इसके जबरदस्ती स्वामी बने फिरते। क्यों हुकुमचंद जी साहब, आपके बाल सफेद हो गए आपसे पूछ के हुए, आपने आज्ञा दी है, हमने मेरे भी हो गए, किसी ने इनने आज तक आज्ञा मांगी नहीं है, और मांगते तो कोई देगा नहीं, क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमने देखा है कि जिनके बाल सफेद हो जाते हैं वे भी उन्हें काले करने की कोशिश करते हैं, शायद भले ही उस चक्कर में तेरा भी काला क्यों ना हो जाए, कोई काला क्यों ना हो जाए, तो आपने खिजाब खिजाब क्या बोलते भाई साहब, वो लगा लगा के करते के नहीं, इससे मालूम पड़ता है कि ये उनकी मर्जी के खिलाफ सफेद हुए हैं। तो जब तक इसे काला रहना था तब तक आप इसे सफेद नहीं कर सके, पर जब सफेद होना हुआ तो उसे आप काला नहीं रख सके। एक बाल पर तो आपकी आज्ञा चलती नहीं है, अब जो चिंता करते हैं, आपके तो सफेद ही हुए हैं, लोगों के तो गायब हो गए। इस बाल को आपके माथे पर जब तक सवार रहना है तब तक सवार रहेगा, आप इसे हटा नहीं सकते। आप तो हटाना चाहते, नहीं हटाना चाहते होते हर महीना दो महीना में कटाते क्यों है? हटाना चाहते ना, रोज दाढ़ी मूछ के बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो आपको हटाना चाहते फिर क्यों आ जाते? बोलो, आपके हटाने से हटते होते तो रोजाना दाढ़ी मूछ क्यों बनानी पड़ती भाई साहब? और जिस दिन जाना होता है विदाउट परमिशन चले जाते हैं, आप कितना ही रोग रहते नहीं है। देखो, हम सब लोग चाहते हैं कि माथे के बाल रहे और दाढ़ी मूछ के नहीं रहे। तो जब रोजाना बनाते इसका मतलब क्या? नहीं रहे यही चाहते कि नहीं? तो माथे के रहे, होता क्या है? माथे के साफ हो जाते हैं, दाढ़ी मूछ छूटती रहती है, बच्ची नहीं होती। बोलो, ऐसे भी कई आदमी यहाँ बैठे होंगे कि माथे के सब बाल गायब हो गए और दाढ़ी मूछ चालू है, जिन्हें हम रोजाना हटाते हैं, रोजाना जिनका हम तिरस्कार करते हैं कि हमें नहीं चाहिए, वे आते रहते हैं। और जिनको हम चाहते हैं कि ये रहे, वे गायब हो जाते हैं। एक बाल पर हमारा अधिकार नहीं है और हम जबरदस्ती मालिक बने बनते हैं। मान की तो दुतर्फी होती है ना, कि हम उसका मालिक बने तो वो हमें अपना मालिक स्वीकार करे, लेकिन उन्होंने तो कभी हमें अपना मालिक स्वीकार किया ही नहीं, हम जबरदस्ती के मालिक बने। इसे बोलते हैं स्वस्वामी संबंध। ये संबंध नहीं है। फिर दूसरा संबंध होता है कर्ता कर्म संबंध, कि हम हैं इसके कर्ता और ये है हमारा कर्म, हमने इसे किया। तो कहते तेरे किए होता नहीं, तो तेरे बिना किए हो जाता है, तो तेरा इसके साथ कर्ता कर्म संबंध भी। पुरुष का एक नेचर है, वो नहीं चाहता है कि उसकी आंख में आंसू आए और आ भी जाए तो वो ये चाहता है कि दुनिया न जाने के मेरी आंख में आंसू आया, तो चुपचाप जाके इस नल घर में धो धोआ के साफ। वो कमजोरी का प्रतीक है ना, और वो नहीं चाहता कि मेरी कमजोरी किसी के सामने प्रकट हो, तो उसके नहीं चाहने पर भी आंख में आंसू आ जाता है कि नहीं? क्या किया उसने, बोलो? और बहुत सी माताएं बहने कभी कभी ये चाहती है कि आंसू आ जाए आंख में और नहीं आते, होता है ना कभी ऐसा? बहुत दिनों से इंतजार हो के कम मरे सासू और कम आए आंसू, और वो न माता छोड़ते ही नहीं है, जम रही है 95 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष और न माता छोड़े, सेवा करते करते परेशान है और मुश्किल से माँ का स्वर्गवास हुआ हो साफ था, क्यों तो आंख में आंसू नहीं आते क्या कर? और लोग आए अड़ोस पड़ोस के बैठने तो वो चाहती है कि भाई आ जाए, नहीं आते तो क्या करे? तो घूंघट मार के रोना पड़ता है। तो एक आंसू पर अधिकार नहीं है इसका। क्या करता है तू? आंसू को लाने की क्रिया का करता नहीं है और आंसू को रोकने की क्रिया का भी करता नहीं है। एक संबंध होता है भोक्ता भोग संबंध, कि मैं हूं भोक्ता और इंद्रियां हैं भोग, लेकिन हमारा अनुभव ये भी बताता है कि ये संबंध में भी कोई दम नहीं है। तो कौन सा संबंध है? तो देखो, इस गाथा में आपके पास किताब हो तो लिखा है कि इंद्रियों के साथ हमारा कौन सा संबंध है। अभी मैंने पढ़ के सुनाया था, ख्याल है? ग्राह्य ग्राहक संबंध। कौन सा संबंध है? ग्राह्य ग्राहक, इंद्रियां है ग्राह्य और भगवान आत्मा है ग्राहक। ग्राह्य ग्राहक संबंध वाले संबंध लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण देखते हैं कलाम ग्राह्य ग्राहक संबंध की निकटता के कारण एक ग्राह्य ग्राहक संबंध क्या है देखो हम बनिया है ना अगर यही संबंध तो है हमारा दिन भर ग्राह्य की तो करते हैं समझदार में भी ग्राह्य की बात आ गई लेकिन यहाँ ऐसी ग्राहक की नहीं है जैसी तुम्हारी दुकान में बाजार में चलती है यहाँ ग्राही ग्राहक का भी अर्थ अलग है समय सार के हर शब्द का अर्थ अलग है तुम्हारा जो अर्थ आज तक जानते हो वो अर्थ काम नहीं आएगा यहाँ वो दुनिया की डिक्शनरी यहाँ काम नहीं आएगी इसकी डिक्शनरी अलग है क्या संबंध है इसका यहाँ ग्राही माने के और ग्राहक माने क्या है वो हमारा जानने में आता है और हम उसे जानते हैं तो ये संबंध है ये भी संबंध है अरे भी स्वस्वामी संबंध हो कर्ता कर्म संबंध हो भोक्ता भोग संबंध हो तो कुछ मजा आए ये अकेला संबंध कौन सा ग्राह्य ग्राहक माने हमने जाना और ये हमारे जानने में आए इतना कोई संबंध होता है जो ऐसा संबंध है कि दो आदमी रास्ते में जा रहे थे एक गांव पड़ा दोनों से प्यास लग रही थी वो चाहते थे कि थोड़ा पानी मिल जाए कोई हो यहाँ पर अपने पहचान रिश्तेदारी इस गांव में तो जाए थोड़ा पानी मिल जाए चाय पानी हो जाए तो उसने अपने दोस्त से कहा भैया मेरी तो यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है तेरी है क्या चले गाँव में कहा मेरी रिश्तेदारी है क्या रिश्तेदारी है कि 10 साल पहले मेरा साड़ू इस गांव में पड़ा बेच गया था तो जिसे वो पड़ा बेचा था वो मेरा रिश्तेदार है तो पागल ये भी रिश्तेदारी है तो ऐसे ही पर पदार्थ ये हमारे कोई संबंधी है कहाँ है कि हमने इन्हें जाना था और ये हमारे जानने में आए थे जानने में आने से यदि कोई संबंध होता है तो सूरज और चांद से भी हमारा संबंध हो जाएगा क्योंकि वे भी हमारे जानने में तो आते ही है ना उन्हें भी अपना रिश्तेदार कह सकेंगे हम कहेंगे हमारे बाप का क्या बिगड़ता है भैया सूरज चांद तो बहुत अच्छे हैं तुम कहोगे लेकिन जानने में तो कदाचित मनमूत्र भी आ सकते हैं ना बाजार में पड़े हो और आपकी निगाह पड़ जाए तो समझने लगे वो भी ग्राहक ग्राहक संबंध तो हो ही जाएगा तुम्हारे ज्ञान के गे तो बन जाएंगे कि नहीं और अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के ज्ञान के गे नाची और निगोजिया बनते हैं कि नहीं कभी उनके संबंधी हो गए कि नहीं ये कोई संबंध नहीं है फिर भी लोक में तो इसे गे ज्ञायक संबंध कहते ही है अल्लाह समझना अब गे ज्ञायक संबंध आगे क्या लिखा है ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण ये निकट का संबंध है भाई साहब क्या बात करते हो तो अपने होते रिश्तेदार के रिश्तेदार के संबंध कभी कभी ऐसा होता है कि जिस गांव में अपन गए ही नहीं उन रिश्तेदार को अपन ने देखा ही नहीं और कभी जाने का मौका मिलता है कि नहीं वहाँ कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल आती कि नहीं निकल आती मामा के फूफा के लड़का के कहीं की मैं कहीं ना कहीं से निकलते हैं हम विदेश में जाते हैं तो वो भी निकल जाती है कहीं ना कहीं
पर और अपन भी थोड़ी क्रेडिट वाले हो गए तो लोग जबरदस्ती निकाल देते हैं और अपनी यदि हालत खराब हो तो सगे रिश्तेदार भी रिश्तेदार मानने को तैयार नहीं होते होते हमारे दोनों बहु में खंडेल वालों की लड़कियां आ गई बड़ी फैमिली से सारी खंडेलवाल समाज की जो बड़ी बड़ी फैमिली है हिंदुस्तान में स्वतंत्र फेट से लेकर के सब तो सब रिश्तेदार हो सब निकालते हैं रिश्तेदारी अपन को नहीं निकालनी पड़ती अब वे निकालते हैं पहले अपन कहते हैं कोई होंगे जब जरूरत हो तो चाहे जितने निकाल लो और उन्हें जाते तो सब निकालते हैं उनका वहां वहां से हमारा संबंध है हमारे में हमारे जैसे करके कहीं ना कहीं है दूर का भी संबंध लेकिन वो संबंध हम तो भाई साहब आज तक आपको जाने ही नहीं आपकी शादी का कार्ड हमारे यहाँ नहीं आया, हमने कभी आपको भेजा नहीं, तो हमारे क्या संबंधी। लेकिन एक ज्ञान विवेक या एक संबंध तो अत्यंत निकट का है, एक तरह
ज्ञान संबंध की निकटता के कारण भगवान जी निकट कह रहे। क्यों? ये तो 24 घंटे हमारे ज्ञान के गेय बनते हैं कि हमारे ज्ञान के ओझल होते ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे रिश्तेदार यहाँ को ये बोलते ही नहीं बोलते बन।
लेकिन एक गेय ग्राहक संबंध में नहीं होता है,
ये तो हमारे आत्मा के ज्ञान के बनते ही है ना, और उन्हें हम जानते हैं।
सगे रिश्तेदारों को कदा तो नहीं जानते हो, लेकिन गेय ग्राहक संबंध वाले रिश्तेदारों को हम
जानते हैं, क्योंकि उनका हमारा संबंध ही सिर्फ जानने का है। तो गेय ग्राहक संबंध की अति निकटता के कारण,
अति निकट का संबंध है ऐसा कहें,
क्या चक्कर हो जाता है कि संबंध तो था गेय ग्राहक अकेले जानने का, हम उसे जो हमारे ज्ञान का गेय बना उसे अपना मान लेते, तो ये चक्कर खड़ा हो जाता है। अज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ, अज्ञान की खान कहाँ से पैदा हुई, कि जिसे जाना उसे ही अपना मान लिया। मन कहते ना के जहाँ मिली दो वहीं रहे सो, जो हमारे ज्ञान का गेय बना वही हमारा बना। ये ऐसी खोटी आदत हमारी बन गई। अब ज्ञान का गेय का संबंध तो कोई टूट नहीं सकता, क्योंकि वो तो आत्मा का स्वभाव है।
जो ज्ञान का खेलोत्सव होगा तो गेय सामने देखने में आए गई, और इसको जो देखने में आए उसी पर रींग जाए, उसी पर लड्डू हो जाए, उस पर मर मिटे, तो मरने के अलावा इसके हाथ में क्या लगने वाला है सोच लो।
अपने बच्चे के कैंसर बढ़ गए हैं, डॉक्टर ने कहा कि ठंडी चीज खाना बिल्कुल मना, और बच्चा तुलसी खाने का बड़ा शौकीन है,
और तुलसी वाला रोजी में अपने मकान के सामने निकल के आवाज लगाता है ठंडी मीठी तुलसी,
और बच्चे दौड़ दौड़ के जाते हैं। आज भी वो आगे आवाज लगाने लगा तो सेठ जी गए तुलसी वाले यहाँ से सड़क से नहीं निकला करे, और निकलना है तो चुपचाप निकल जाओ, आवाज नहीं लगा सकते हो।
क्यों?
हे बाबूजी, ये शहर आपका नहीं हो गया है, आप तो ऐसी बातें करते हैं। कुल्फी वाला कुल्फी वाला
क्यों नहीं चिल्ला है, वो तो हमारी आजीविका है। क्योंकि तो हमारा बच्चा रोता है, हमारा बच्चा नहीं रोएगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा।
हमारे बच्चों को रुलाने तो हम आए हैं, वो तो हमारी आजीविका है। लेकिन भाई उसे निमोनिया हुआ है, मुझे कैंसर खराब हो गए हैं, डॉक्टर ने मना किया है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी चुपचाप कुल्फी खरीद लो और फिर नली में फेंक देना, मैं चला जाऊंगा, नहीं तो मैं तो घरे घरे चिल्लाऊंगा।
बोलो, रोक सकते हो आप उसे? और वो बेटे के ज्ञान का गेय बनेगा कि नहीं बनेगा?
बेटे के कान में लुई लगा दो, वो भी होने वाला नहीं है, वो चिल्लाएगा और बेटा सुनेगा। मैंने ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध को बढ़ेगा, क्योंकि उसका ग्राहक है वो। अब क्या उपाय है मैं बोलता हूँ, एक ही उपाय है कि तुम अपने बेटे को समझाओ और बेटा समझ जाए कि कुल्फी खाने से तेरे को बहुत तकलीफ होगी, बेटा तू कुल्फी मत खा, यही रोक हो सकती है। तो गेय गाय संबंध नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि वो तो स्वभाव अधिकार है,
उसका चिल्लाने का अधिकार है, उसके कानों का सुनने का अधिकार है,
वो सुनने के बाद भी उसे कुल्फी खाने की इच्छा नहीं हो तो ही उसका कल्याण है, नहीं तो मरना पड़ेगा बिल्कुल। ऐसे ही पर पदार्थ के साथ ये भगवान आत्मा का जो गेय गाय संबंध है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, वो जानेगा तो जानेगा, कोई दुनिया की ताकत हो तो रोक ले, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आने से रोक ले।
कौन सा संबंध है?
ग्राह या ग्राहक है, जो बच्चों का संबंध अच्छा लगता है ना,
ये क्या क्या संबंध है,
ग्राह ग्राहक ग्राह की अच्छी रहती ना,
यह ग्राह ये ग्राहक ग्राहक माने ग्रहण करने वाला जानने वाला तो ग्राह ये माने के जगत के पदार्थ के तो बनेंगे लेकिन तुम इन्हें अपना मत मानो इनके स्वामी मत बनो इनके कर्ता भोक्ता मत बनो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहते कि नहीं भाई साहब हमारे जानने में आएंगे तो फिर हमें कर्ता बने बिना भी रहा नहीं जाएगा और भोक्ता भी बनेंगे और मालिक भी बनेंगे तो नरक निबोज में भी जाओगे। यदि ऐसी बात है ना तो ठीक है हम जानेंगे ही नहीं। अरे जानोगे नहीं ये तुम्हारे हाथ में होता तो तुम कभी नहीं जानते। नहीं जानना है तो इसका उपाय एक ही है कि निबोज में जाना पड़ेगा बेटा। वहाँ भी पर्याय नाम का ज्ञान तो रहेगा उतना तो थ्योरम ज्ञान का रहेगा और उतना तो पदार्थ जानने में आएगा ही। पूरा नहीं जानना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। नहीं जानना है तो जड़ बनना पड़ेगा तुम चेतन नहीं रहोगे। बोलो क्या है समझ में आ गई अपने ये प्रदर्शनी लगती गली लगती है तुम्हारे जबलपुर में भी लगती होगी। बढ़िया बढ़िया चीजें रखी जाती है देखने के लिए और दुनिया को बुलाया जाता है एडवर्टाइजमेंट करके कि बढ़िया बढ़िया चीजें देखो। हम लोगों की एक खराब आदत कि जिस चीज को देखे तो छू कर देखना चाहते हैं। अब बढ़िया पिकासो का चित्र है लाखों की कीमत है उसे तो हजार आदमी उंगली लगाए तो चित्र ही फट जाए गंदा हो जाए तो उसमें कांच लगा देते हैं जिससे कि वो गंदा नहीं हो। अब लोग जानते हैं एक कांच लगा है मैं छूंगा तो भी उस तक मेरा हाथ पहुंचने वाला और कांच को अपने घर में भी बहुत अच्छी होते ही छू के देख ले। लेकिन नहीं चेन नहीं पड़ती है तो कांच को ही छू के देखते हैं और हजारों लोग उंगलियां लगाएंगे तो कांच गंदा हो जाता है तो उसमें लिख दिया डोंट टच स्पर्श न करे छुए नहीं। तो हम जाते हैं और पढ़ते हैं डोंट टच और पुलिस वाले को रखा कोई आदमी छुए तो उसे रोको तो पुलिस वाला हमें रोकता है तो भी हम तंग करते हैं कुछ लोग रुक जाते हैं हमको लड़ने लगते हैं रमेश भैया हम तो तंग करें। पुलिस वाला कहेगा तुमने ज्यादा झगड़े की तो बाहर निकाल दूंगा। तो कैसे निकाल देंगे तो हमको इतनी बढ़िया चीज देखने में आती है तो तंग करने की इच्छा हुए बिना रहती नहीं हम क्या करें। कि देखो भाई साहब यहाँ ये देखने का अधिकार है टच करने का अधिकार नहीं है। नहीं है तो तुम प्रदर्शनी बंद कर दो क्योंकि तुम देखेंगे तो हम टच किए बिना भाई साहब प्रदर्शनी क्यों बंद कर दे। तुम पे यदि नहीं रहा जाता है तो अपनी आंखें फोड़ लो तुम बाहर निकल जाओ तुम मत देखो प्रदर्शनी तो लगी रहेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए तो हमने ये लगाई है इसका नाम प्रदर्शनी है टचनी नहीं। आप इसे देख सकते हैं टच नहीं कर सकते हैं और फिर भी नहीं मानोगे तो गंध मिलेगा उसका। क्या तुम प्रदर्शनी बंद कर दो? क्या प्रदर्शनी बंद नहीं होगी तुम्हें बिना छुए देखना पड़ेगा और नहीं देखना है तो अपने घर जाओ। कैसे बंद कर दे? हमने इतनी मेहनत इसलिए की है कि कोई नहीं देखे। मैं और गहराई ले जाए सुधार में एक लड़की ने 5 वर्ष की उम्र से भरतनाट्यम सीखा पूरी पूरी सुंदर तो लड़की थी और 25 वर्ष की जब हुई तो पूरी जवान भी हो गई और 20 वर्ष से जो नाचने का काम कर रही थी शरीर कितना सुगठित हो गया होगा और सुंदर एकदम एमज और भरत नाट्यम कला में इतनी निपुण लाखों लोग उसे देखने के लिए तरसते हैं। अमेरिका यूरोप सब जगह जाती है और हजार हजार डॉलर के टिकट बेचते हैं तो सारी दुनिया में वो अपने नृत्य का प्रदर्शन करेगी या नहीं करेगी। वो लड़की भी खूबसूरत है सुंदर है सुगठित है तो हजारों नालायकों के हृदय में उसका नृत्य देखकर उसे छूने की इच्छा भी होगी क्या नहीं होगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जिनको ऐसी इच्छा हो उन्हें उस लड़की को छूने का अधिकार दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता ना। और लोग कहें कि नहीं साहब, हम देखते हैं तो छूने की इच्छा होती है, इसलिए तुम उसको नात्र बंद करा दो, तो होगा बंद? उसने 20 वर्ष तक जिस कला की साधना की है, इसलिए ही तो की है कि विश्व को मैं दिखाऊं। उसने भरतनाट्यम मोक्ष जाने के लिए नहीं सीखा क्या के लिए सीखा? दिखाने के लिए सीखा है ना, तो वो अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करेगी। तुम पे नहीं रहा जाता तो तुम मत देखो, वो तो सारी दुनिया में अपनी कला का प्रदर्शन करेगी करेगी और करेगी। ऐसे ही हम कह रहे कि हर पदार्थ में एक प्रवेयत्व नाम का धर्म है, उसका काम है कि किसी न किसी ज्ञान का वितरण बने, और हर जीव में एक ज्ञान नाम का गुण है जिसका काम है कि वो किसी न किसी पदार्थ को अपने ज्ञान का ए बनाए। इसलिए ये एक ज्ञायक संबंध जो है, ग्राही ग्राहक संबंध है, ये तो अत्यंत निकटता का संबंध है और इसे दुनिया में रोका नहीं जा सकता। क्या रोका जा सकता है? अब चक्कर क्या है कि हमें चाहते हैं, वस्तु स्वरूप एक कहता है इतना ही संबंध रखो, इससे ज्यादा नहीं, और हम इतना रख नहीं सकते, उसके आगे स्वस्वामी कर्ता कर्म भोक्ता भोग संबंध बनाना चाहते हैं तो यही झगड़े की जड़ है। और अनादिकाल से हमने इसी मर्यादा का उल्लंघन करने का अनंत दंड होगा है, और 4 गति और 84 लाख योनियों में झगड़े। अब क्या करें? ये संबंध तोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? स्वस्वामी संबंध, कर्ता कर्म और भोक्ता भोग। एक अर्थ को तो संबंध नहीं कहते ना, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो कहते हम एक ही शर्त में छोड़ सकते हैं कि ये पदार्थ हमारे ज्ञान के गे भी नहीं बने, ये शर्त तुम्हारी नहीं मानी जाती। क्यों? कि आत्मा का स्वभाव है जानना और गेयों का स्वभाव है जनाना, ये काम कैसे हो सकता है? बोलवा कोई आदमी कहे मेरा मन तो बहुत पवित्र है, कभी मेरे मन में काम विकार पैदा होता ही नहीं है, लेकिन कोई महिला दिखाई दे जाए तो गड़बड़ हो जाती है। अरे बेवकूफ, ऐसा कोई आदमी ना, ऐसा सबका ही होता है, तो क्या करे? इस दुनिया को महिलाओं से खाली कर दे कि उसका मन खराब नहीं हो? इसके लिए कि जगत को महिलाओं से खाली किया जा सकता है? जगत को जाने दो, अपने घर को भी खाली नहीं किया जा सकता है। घर में भी माँ बहन रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बेटियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्यों भाभियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी? बोल कि आपने क्या कर देख, कोई दिखाई दे जाए तो मेरा तो मन गड़बड़ हो जाता है, तो नारायण पूरी घर छोड़ दे। क्या उपाय है बोलो? जगत को तो नहीं खाली किया जाएगा ना, और आंखें भी नहीं फोड़ने से काम चलेगा, तो क्या उपाय है? कि ब्रह्मचर्य तो उसका नाम है कि महिलाएं दिखे और फिर भी हमारा मन विकृत नहीं हो, किसी का नाम है कि नहीं? ये कोई बात है कि पर पदार्थ हमारे ज्ञान के गेय नहीं बने तो हमारा कल्याण हो जाए? तो गेयों को कैसे हटना है जगत में से, बोलो? अरे घर में से तो भाग भी सकते हैं ब्रह्मचारी लोग, लेकिन ये लोकाकाश में से कैसे भागे? क्योंकि तो लोकाकाश के आगे जा ही नहीं सकते, धर्म द्रुप कर नहीं है, तो कि चले भी जाए तो अलोकाकाश भी तो गे है, वहां जाके भी गे मिलेगा, और पहले उसका क्या हिसाब देगा? क्यों क्या करेगा? यहाँ तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, यहाँ तो एक ही रास्ता है कि गे का एक संबंध रहेगा, अति निकट का रहेगा, और कर्ता कर्म संबंध तू स्थापित नहीं करे तो तेरा कल्याण हो सकता है। तो कितनी ही बारीक बात है, इतने में तेरा कल्याण का रास्ता है, इतने में यह कल्याण का क्या लिखा? ये गायक लक्षण वाले, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की अति निकटता के कारण जो गे इसके ज्ञान में झलकते हैं ये उन्हीं गेयों को अपना मान लेता है।
आचार्यों ने जवाब दिया, भूमि न होते चांदनी की जो क्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी।
क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा की चांदनी आकाश में खिलती है तो जितनी चांदनी उस जमीन पर पड़ी वो जमीन चंद्रमा की हो जाती है क्या? चंद्रमा उसका मालिक है?
भूमि न हो तो चांदनी की जो जिस प्रकार जमीन चांदनी की नहीं हो जाती उसी प्रकार क्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। गे को ज्ञानी माने जानने वाला, गे का धनी माने मालिक नहीं है।
कहेगा
क्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी।
आत्मा का ज्ञानी नहीं लगाया,
गेहूं को जानने वाला जो ज्ञानी है वो उनका ज्ञानी तो रहता है पर धनी नहीं हो जाता।
ऐसे ही गेहूं को जानने वाला आत्मा गेहूं का ज्ञानी तो रहेगा लेकिन उनके साथ स्वस्वामी संबंध नहीं होगा, कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा और भोक्ता भोग संबंध।
क्या लिखा?
ग्राह लक्षण की अति संबंध की अति निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी दिखाई देती है।
क्या कह रहे?
ये इंद्रियां ये है ना हमारी शरीर, ये हमारे ज्ञान का गेय बनी। संबंध हमारा इसका क्या था? ज्यादा गेय संबंध था और हमने मान लिया कि ये तो मैं ही हूं, ये तो मेरी है, मैं तो इनका करता हूँ और मैं इनका भोगता हूँ। ठीक है, मैं भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्धा की पदार्थों में ऐसी खोटी आदत है कि जिसको जाने उसको ही अपना अपना छोटा बच्चा हो दो बरस का, मेहमानों के घर जाए और जो चीज है वो ही मांगने लग जाए, मेरा चश्मा दिखा दे, हमें चश्मा देखिए कई बजार से दूसरा लगा रही नहीं, मुझे तो यही चश्मा चाहिए। घड़ी रखी देख, घड़ी चाहिए, हर चीज मांगने लग जाओ रोने लग जाओ तो क्या करोगे आप? बोलो तुम जी क्या करोगे आप? चिल्लाओगे बहू पे घर के कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं देती है जहां ज्यादा चीज मांगने लगता। और जब तक यदि ये उसकी खोटी आदत नहीं छूटे तो बहू बेचारी घर से नहीं निकल सकती बच्चे को लेकर। बहू जाए तो सास घर में रहे बच्चे को संभाले और सास जाए तो बहू घर में है, क्योंकि ये जहां जाता हो ही रोना जो दिखा उसी को। बाजार में गया तो मारती कार के क्या शोरूम तो मुझे तो कार दी, इतने मालूम कार कितने में आती है, बस 1000 लूंगा, 5 लाख में आती कभी 93 बाद में 5 लाख।
बच्चे को थोड़ी पता एक क्लर्क का लड़का उसका जो मन करता है।
बोलो ऐसे लड़के के दुख का कोई अंत है? 24 घंटा रोने के अलावा उसके हाथ में क्या मिलने वाला है? और तो दुख कहेंगे माँ बाप की भी पिटाई लगने वाली है, डांटे पड़ने वाले
क्यों?
जब अर गया कि मैं तो माँ की काल लूंगा और ये लूंगा बस था मुझे, तो उसने कहा पापा ने कहा बेटा अभी अपन पैसे नहीं लाए, क्या लाएंगे पैसे लेके मिल जाएंगे। अब पक्की बात है? पक्की, कल आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। घर आया पापा, चलो कल कार ले लेंगे, पागल हो गया है क्या? गड़बड़ की तो साधा पड़ेगा, झूठ बोल दो, कल तुमने कहा था ना कल आएंगे ले आएंगे, इसलिए बोला था कि नालायक को ही रो रहा था, सारा दुनिया मुफ्त में बिना पैसे का समझकर देखता, इसलिए यहाँ लाया।
तेरे पास से पैसे हैं? मैं झूठ क्यों बोला? वही कह देते क्या? नहीं झूठ तो इसलिए बोला कि वहां तेरे को पीटना नहीं चाहता, अब यहाँ तेरी पिटाई करूंगा, इसलिए वहां से ना ऐसा होता नहीं होगा तुम्हारे साथ, कभी टिकट होगा होगा कि नहीं होगा।
जो दिखाई दे वही मुझे चाहिए। क्यों? ऐसे ही सारे ही हो रहे हैं बालकों जैसी हमारी हालत हो गई है। राजा साहब निकले जो लड़की दिखी बस, ये लड़की सुंदर है किसकी है हमारे रन बात में भेज दो, ऐसे सभी सम्राट हो रहे, जो गे लिखा उसमें अमृत, जो गे लिखा उसमें अमृतवन, और उसके कारण एक दुर्दशा हो रही है। आचार्य कहते एक ही उपाय है सुखी होने का, कि क्या कि सारा जगत तेरे ज्ञान का गे बने और तू एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं माने, नहीं जाने, उसका कर्ता भोक्ता नहीं बने तो तेरा कल्याण हो सकता।
करना क्या नहीं करना बोलो, ये तो अंतिम व्याख्यान है ना, अभी दोपहर में तो चर्चा होगी ना। क्यों बिंदन जी साहब, तो
असली माल है कि नहीं है बोलो, ये एकदम हाथ पर रखे हुए आने जैसी बात है। क्या पंडित जी, हम तो पर को देखना ही नहीं, आत्मा पर को जानता ही नहीं, सारा झगड़ा खत्म, ये सूरदास जैसा सिद्धांत नहीं चलेगा, ये तो अपनी आंखें फोड़ने जैसी बात है। आंखें कायम रहेंगी, सारी दुनिया तुझे देखनी पड़ेगी और रंग मत भी पर में अपनापन स्थापित नहीं करना पड़ेगा, यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। इसे लिखा देखो क्या किया, छिड़ किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्मृति पदार्थों को उन्हें अपना मान लेता था, जीतना है तो कहते हैं चैतन्य शक्ति के स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, ये इंद्रियों के विषयों को जीतना हुआ। तो क्या कहते हैं कि जब तेरे ज्ञान में झलके तो तू अपने आत्मा का असंग स्वभाव का विचार करना, कि ये झलक गए लेकिन आत्मा का स्वभाव किसी का संग बनाने का नहीं है।
हमारे मुनिराज है, एक गांव में ज्यादा क्यों नहीं ठहरते, सौ से दो हजार
मजबूरी है, लेकिन बड़ा गांव हो तो 7 दिन, मधुरा गांव हो तो 5 दिन, और छोटा गांव हो तो 3 दिन, इसे ज्यादा नहीं ठहरते ना। क्यों नहीं ठहरते था,
क्योंकि ज्यादा दिन साथ रहने से वो साथ संग में बदलने लगता है, कुछ लोगों से राग हो जाता है, कुछ लोगों से देश हो जाता है, तो जल्दी भागो वहां से, इसलिए निरंतर विहार करते हैं, किसी स्थान से राग नहीं हो जाए, किसी व्यक्ति से राग नहीं हो जाए। पुलिस वालों का तबादला क्यों करते हैं हर महीने में, किन्हीं से उनकी ज्यादा पहचान नहीं हो जाए, जैसे एजेंट नियुक्त हो उसके पहले ही कर दो तो भी वो उनका काम तो होता ही है, तो नहीं है ज्यादा काल एक जगह रहने से संबंध बढ़ते ही है, राग बढ़ता ही है। ये कैसे भाई देख रहे तू, सारी दुनिया तेरे ज्ञान का गेय बनेगी और तेरा स्वभाव है असंग, तुम उसको मत छोड़ना, किसी का संग मत बनाना, कोई मेरा नहीं है, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, इसके लिए रोजी ना के बारे भावना का चिंतन करना कि कोई संग ना बन जाए, साथ ना बन जाए। असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, किया माने क्या जाना, अलग तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, किसी एक परमाणु को यहाँ से वहाँ हरा नहीं सकते, अलग किया माने अलग जाना, ये है इंद्रियों के विषयों को जीतना। इंद्रियों के विषयों को जीतना क्या है, कि अपने आत्मा के असंग स्वभाव से उनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं स्थापित करना, हुए तो तोड़ देना, इसलिए ये हुआ इंद्रियों के विषयों को जीतना। अब अपने पास कुछ 5-7 मिनट है, अब ये जीतना कैसे, क्या क्या है, विधि तो बता चुका हूँ लेकिन वो जीतने का स्वरूप क्या है इसकी बात करनी है। क्या ठीक है, हम कल से इंद्रियों के विषयों को जीतेंगे, असंग स्वभाव के बल से बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, वो जो तेरा असंग स्वभाव है अंदर आत्मा में ना, जब तक वो तेरा आत्मा तेरी ज्ञान पर्याय का सीधा के नहीं बनेगा, तब तक जिसको तू देखेगा उसमें अपनापन स्थापित किए बिना रहेगा ही नहीं। एक दफे सारे जगत से दृष्टि हटाकर उस अपने भगवान आत्मा को ज्ञान का गेय बना, अनुभूति का विषय बना,
तो ही ये काम होने वाला है। अंततः हजार कोशिश कर, विकल्पों से मन में खूब चिंतन कर, खूब विचार कर, ये विचार विचार से कुछ होने वाला नहीं। होता होता तो अभी का कई दफे हो गया होता, क्योंकि हमने बारह भाव लोगों का विचार भी कमजोरी किया। अब अकेला अवसर है, मरे अकेला सूर्य, योग भूमिया जीव को साथी सगा न कोई। हमने खूब विचार किया क्यों, लेकिन वहाँ विचार करते रहते हैं और यहाँ साथी बढ़ाते रहते हैं, यहाँ उनमें ही मंगल रहते हैं। जो करते रहते कि नहीं करते रहते, ये दोनों काम एक साथ करते रहते हैं, नहाने में, धोने में, खाने में, पीने में स्तुतियां बोलते रहते, भक्तियां बोलते रहते बराबर। क्यों सन का श्रृंगार किया अब तक, आत्म को अब तक नहीं जाना, ऐसा कहते कहते हुए सन का श्रृंगार किया अब तक कम से कम एक कहते हो तो मत कर भले आदमी। अब तक अगर दिल दिल जो से यह घूम कर मेरे की साहब के लिए ये तो तेरी जबान को याद हो गया है, जैसे टाइपिस्ट की उंगलियों को याद हो जाता है तो बराबर का टाइपिस्ट चलता रहता है और गप्पे लगाता रहता है, ऐसे ही मुंह से बोलता रहता है और हृदय पर उसका कोई असर नहीं होता। तब तक होगा भी नहीं, तब तक जब तक वो भगवान आत्मा तेरे ज्ञान का गेट स्वयं नहीं बनेगा, सीधा नहीं बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, इंद्रियों के माध्यम से बना वो काम नहीं चलेगा। गुरु ने समझाया उससे काम नहीं चलेगा, शास्त्र में पढ़कर जाना उससे काम नहीं चलेगा। वो भगवान आत्मा तेरे ज्ञान का गेट जब बनेगा डायरेक्ट, तब ये काम होने वाला। अभी तो बहुत कड़क तक है, लेकिन कड़क है तो क्या कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने सारी जिंदगी में नींबू का स्वाद नहीं चखा और फिर खूब किताबों में पढ़ा नींबू के गुण, नींबू का इतने है, इतनी से विटामिन सी होता है, लवण क्या क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया और स्वाद में खट्टा होता है और एक इस जाति का वृक्ष है आता है सब, और उसमें ऐसे नींबू लगते हैं, छोटे नींबू होते हैं, बड़े होते हैं, कागजी होते हैं, सारी क्वालिटी आपने पढ़ ली। बोलो तो नींबू कैसा खट्टा होता है समझ में आता है, कितने साफ से पढ़ो नींबू के बारे में, क्या भाई साहब नहीं आएगा। अब क्या करना है, ये जवान खोलो सीधा नींबू ऐसा उंगली से जवान का सीधा निचोड़, कहते गिलास विलास में एक गिलास पानी में दो थोड़ा चीनी उसमें डाल करके कहना चाहे चिकन जी क्या वो बना के पियोगे नींबू का स्वाद मालूम नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत मिक्सचर हो गया, उसमें चीनी का स्वाद आ गया और डाइल्यूट हो गया एक गिलास पानी में, वो नींबू का ख्याल नहीं आएगा सीधा क्या चक्कू से भी काटो मत, जो कुछ चक्कू में कुछ लगा होगा तो उसमें लग जाएगा। ऐसा डालो एक जवान में नींबू का स्वाद कैसा होता है पता लग गया, हजार पेज पढ़ने से जो पता नहीं लगा था वो तो एक बूंद चखने से पता लग गया। अब आपको तो पक्का पता हो गया कि नहीं, यहाँ का आप लोग को पक्का हो गया, अब कोई संशय तो नहीं है कि नहीं है, तो अब आप सबको समझा दो कि नींबू का स्वाद कैसा होता है। आप सारे अच्छे प्रोफेसर हो, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है ना, अब समझाने में दिक्कत है, बोलो क्या घंटे में समझा सकते हो रंजन जी साहब, आप तो मास्टर हो ट्रेन हो टीचर से बहुत बढ़िया ली है, ये सारी जिंदगी समझाए तो भी किसी की समझ में नींबू का स्वाद आएगा खट्टा, तो खट्टी तो इमली भी होती है, खट्टी तो अमिया भी होती है, खट्टी तो अमसुर भी होता है, हम से तो बहुत चीजें खट्टी है, सबकी खटास में फर्क है कि नहीं। एक हजार पेज पढ़ने से नींबू का स्वाद समझ में नहीं आया था और एक हजार घंटे के भाषण से भी सुनने से भी नींबू का स्वाद समझ में नहीं आया, और अब एक एक नींबू मंगाओ और एक एक बूंद सब्जी जमान पर आया क्या गया है कोई उपाय, तो बोलो आत्मा का अनुभव कितने सांस पढ़ने से हो जाएगा और कितने पंडितों से समझने में हो जाएगा और क्या नहीं धर्मात्मा हो सुनो केवल की अब तो पक्का तो हो जाएगा कि नहीं अज्ञानी में तो नहीं होगा ज्ञानी में तो हो जाएगा कि नहीं। अरे दिव्य दुनिया में केवल ही आगल रहेगा पूरा गुरुदेव के मुख से सुना कि नहीं सुना यदि किसी ज्ञानियों ज्ञानियों से होता होता तो केवल के आगे कोरा रह के कैसे आ गया तो केवल तो ज्ञानी थे कि नहीं थे और जिन ज्ञानियों की तुम इतनी महिमा गाते हो अघाते नहीं हो उनके पीछे लट्टू हो रहे हो पागल हो रहे हो आधे तो हो ही रहे हो उन ज्ञानियों से कितना को हो गया बता दो ना कि तुम्हें हो गया कि हमें तो नहीं होगा पागल हो गए नहीं हो वे आधे हो तुम पूरे नहीं होगा केवली के आगे कोरो रह गया भाई साहब खेती मूली है तो फिर क्या होगा शासन तो लिखा है कि देवनानंद जी के बिना नहीं होता हम भी कह रहे कि नहीं होता नहीं होता होता तो जिनवाणी लिखी क्यों जाती पढ़ी क्यों जाती सुनाई क्यों जाती भगवान की दिव्यदनी खेती क्यों इसके बिना नहीं होता ये बात 100% सत्य है और इससे नहीं होता ये भी 100% ख्याल में आएगा नहीं होगा जब वो अंतिम बिंदु जैसे वो नींबू का रस चखने के लिए जवान पर पड़ना जरूरी है ऐसे ही तेरा भगवान आत्मा तेरे ज्ञान का बिना किसी के आनंद के डायरेक्ट ज्ञान का एक